नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहमाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जिससे मैं तृप्त हूँ। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं और पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से हम तक अपने आशीषों को पहुंचाते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे एवं सहायता करे। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों नहमिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि नहमिया शहर पनाह को बनाने के लिए अपने लोगों के साथ पूरे हथियार के साथ औजार के साथ उसकी रक्षा करते हुए अपने लोगों को शहर पनाह बनाने में मदद कर रहा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आंतरिक विरोध के प्रति नहमिया की प्रतिक्रिया। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सीखते हैं हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, अपने जीवन में किसी प्रकार की ऐसी इच्छाओं को लेकर के बैठे हुए हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें। आज के इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं ताकि हर एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को सुनता है आपके वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यरूशलेम की शहर पनाह के पुनः निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में नहमिया को अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा था। शैतान बहुत चतुर है। पहले तो बैरियों ने उनका ठट्ठा किया, इसके पश्चात उन्होंने उनका उपहास किया और अंत में खुलकर उनका विरोध किया। इस बार विरोध इतना प्रबल था कि उन्हें एक हाथ में कन्नी और एक हाथ में तलवार लेकर काम करना पड़ा था। नहमिया और उसके साथी काम में इतने अधिक व्यस्त हो गए थे कि वे अपने वस्त्र भी तब ही बदलते थे जब वे स्नान करने के लिए जाते थे। अब हम देखेंगे कि विरोध भीतर से भी आ रहा था और यही वह स्थान है जहां वैरी अपना घातक वार करता है। कलीसिया के इतिहास में देखने को मिलता है कि जब सताओ द्वारा शैतान कलीसिया को नष्ट नहीं कर पाया, तब उसने कलीसिया की सदस्यता ले ली। शैतान ने यहूदियों को निराश तो कर ही दिया था, अब उसका दूसरा चरण था उनमें फूट डालना। आइए हम पढ़ेंगे नहमिया की पुस्तक 5:1-4। नहमिया की पुस्तक 5:1-4। तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरोध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया। ध्यान दीजिए, मानवीय स्वभाव बदलता नहीं है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रौद्योगिक, यांत्रिकी और अंतरिक्ष के युग में जी रहे हैं, परंतु समस्या वैसी ही है जैसे नहमिया के युग में थी। मेरे विचार में तकनीकी साधन हमारी समस्याओं को बढ़ा ही रही है, वरन उन्हें कटीली और असाध्य बना रहे हैं, क्योंकि यहूदी शहर पनाह बनाने में इतना अधिक व्यस्त थे कि उन्हें अपने व्यक्तिक कार्यों के लिए समय नहीं मिलता था। उन्हें अपने परिवार के लिए खाद्य पदार्थ खरीदना जरूरी था, जिसके लिए उन्हें अपनी संपत्ति बंधक रखनी पड़ती थी। कुछ ने तो कर भुगतान के निमित्त अपनी संपत्ति बंधक रख दी थी। उस युग में कर का बोझ बहुत भारी था, वे अपने भाइयों से पैसा उधार ले रहे थे। अब हम देखेंगे नहमिया 5:5 में लिखा है, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ में पड़ी है। यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, परंतु नहमिया को इसका ज्ञान नहीं था। वे यरूशलेम के शहरपनाह का पुनः निर्माण करना चाहते थे, अतः उन्होंने गुप्त रीति से अपनी संपत्ति अपने भाइयों के पास बंधक रख दी थी। उनमें से कुछ सफल व्यापारी भी थे। जब तक उनमें परस्पर प्रेम एवं सामंजस्य था, वैरी बाहर से उन्हें हानि नहीं पहुंचा पा रहे थे, परंतु अब उनमें आपस में ही फूट पड़ गई थी। आपको स्मरण होगा कि आरंभिक कलीसिया में भी यही समस्या थी। हनन्याह और सफीरा ने अपने भाइयों के साथ छल करने का विचार किया और परमेश्वर ने उन्हें तत्कालिक मृत्यु दंड दिया। उनका धोखा धन संबंधित था। मैं नहीं जानता कि पैसा क्यों ऐसी बड़ी परीक्षा है, परंतु वह है। मैं एक ऐसी कलीसिया को भली भांति जानता हूँ, बहुत समय से पैसों का ब्यौरा गलत दे रही है। एक पुरानी कहावत है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते परंतु झूठे लोग पकड़े जाते हैं। यह आज भी सच है। आर्थिक लेखा विवरण ऐसा बनाया जा सकता है कि बहुत अच्छा दिखे, परंतु उसमें संपूर्ण सत्य प्रकट नहीं किया जाता। आज अनेक कलीसियाओं में ऐसा ही हो रहा है। यह कलीसियाओं में शैतान का प्रवेश द्वार है। मैंने सदा यही देखा है। नहमिया को ऐसी ही समस्या का समाधान करना पड़ा था। जी हाँ, धर्म शास्त्र में हमारे लिए बहुत अच्छा परामर्श दिया गया है, फिलिपियों की पत्री 1:27-28 पद में। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते हो। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पौलुस के कहने का अर्थ यह है, आपस में मेल रखो, अपने व्यवहार में सत्य निष्ठा बने रहो, किसी के बारे में बात का बतंगड़ मत बनाओ और अपने भाई को नीचा मत दिखाओ, सदा सत्य बोलो। सच बोलने से मेल बढ़ता है। वृद्ध याकूब, जो बूढ़ा हो चुका था, अत्यधिक व्यवहारिक था, कहता है याकूब 3:16 पद में, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हनन्याह और सफीरा के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कलीसिया के साथ अपने संबंधों में झूठ को स्थान दिया और अव्यवस्था उत्पन्न की। नहमिया के युग में कुछ यहूदियों ने पैसा उधार लिया और जब वे उधार चुका ना पाए तब उन्हें अपने पुत्र पुत्री को दासत्व में देना पड़ा। यद्यपि यह कुछ समय के लिए था, परंतु कुछ के लिए जीवन का नाश करने को बहुत था। पैसा उधार लेने पर उन्हें ब्याज देना पड़ता था और आज के व्यापार जगत में ब्याज का काम विधि सम्मत माना जाता है, परंतु इसराइल के वंशजों में यह अनुचित काम था। परमेश्वर का आदेश था कि इसराइली अपने भाई से ब्याज ना ले। अब तक तो नहमिया शांत था, वह अपने लोगों का साथ दे रहा था और सहनशील था, परंतु अब वह कुपित होता है। आइए पढ़ें नहमिया 5:6। लिखा है, यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। ध्यान दीजिए, अब वह क्रोधित ही नहीं, बहुत क्रोधित था। नहमिया 5:7 पद में लिखा है, तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की। तब अपने मन में सोच विचार करके अब निर्णय लेना उसी का काम था, अतः उसने समस्या पर विचार किया। नहमिया 5:8 पद में लिखा है, और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है, फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। नहमिया ने रईसों और हाकिमों को सबके सामने झिड़का। गलत करने वालों का उसने समुदाय में पर्दाफाश किया। ऐसी स्थिति में यही किया जाना चाहिए, यह उचित है। कलीसिया को चेतावनी भी देना आवश्यक है, यदि उनके मध्य ऐसे लोग हैं जो व्यवहार में सत्यनिष्ठ नहीं और अधर्म का काम करते हैं। बुराई को सबके सामने लाना चाहिए। नहमिया ने अपने भाइयों के मध्य गलत काम करने वालों को सबके सामने रखा। लोग प्रायः कहते हैं आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 26 पद में पौलुस कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आपके क्रोध करने में कारण ही मुख्य आधार है। यदि आप स्वार्थ के कारण क्रोध करते हैं तो यह अनुचित है। यदि आप परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के नाम के अपमान के कारण क्रोध करते हैं तो वह पाप रहित क्रोध है। नहमिया पाप के अनावरण के संबंध में शांत नहीं बैठा। वह निष्क्रिय नहीं था, वह चुप रहकर स्वीकार नहीं कर रहा था, उसने खुलकर निंदा की। जी हाँ, कलीसिया में अनुचित बात देखकर हमें धर्मी क्रोध करना चाहिए। हमें अनिष्ठाकारी को स्वीकार नहीं करना है, उसकी ओर से आंखें नहीं बंद करना है। कुछ का कहना है हम अव्यवस्था लाना नहीं चाहते हैं। सच में आप अव्यवस्था लाना नहीं चाहते हैं? मेरे मित्रों, उचित होगा कि आप कुछ करें। शैतान ने आपको वश में कर लिया है, वह आप में विभाजन उत्पन्न कर देगा। हमें आज साहस की आवश्यकता है, हमें पाप बोध की आवश्यकता है। आज कलीसिया संसार में सुनाम नहीं है, संसार उसे अनदेखा कर रहा है। आत्मिक अभियान सब कलीसिया से बाहर है। विश्वासी कलीसिया का खेल बनाए हुए है। कलीसिया में नियंत्रण रखने वाला समूह प्रसन्न है, परंतु वे भटकी हुई आत्माओं तक नहीं पहुंच पा रही है। संसार को अब कलीसिया में रुचि नहीं रही। मेरे मित्रों, किसी प्रचारक ने मुझसे कहा, मुझे यह सोच सोच कर क्रोध आता है कि आप भटके हुए तक पहुंचकर उनका स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि वे आपके आडंबर से, आपकी धार्मिक शब्दावली से और कलीसिया में विद्यमान अनिष्ठा से परिचित हैं। परंतु संसार में ऐसे लोग भी हैं जो सत्य को जानने के लिए लालायित हैं। वे जानना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं उसमें क्या हम सत्यनिष्ठ हैं। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कलीसिया की बुराई पर पर्दा डाल देते हैं। उनका तर्क यह है कि वे मधुर एवं सौम्य व्यवहार द्वारा मसीह आचरण प्रकट करना चाहते हैं। यह विश्वासी का व्यवहार नहीं, एक कायर का व्यवहार है। नहमिया ने अपने भाइयों के पाप को सब में प्रकट किया और उसके समक्ष मुंह खोलने वाला कोई नहीं था। उसके सामने तो सब चुप थे, परंतु वे समस्या अवश्य खड़ी करेंगे। और जब वह शूशनगढ़ में पहुंचा, तब उन्होंने बहुत समस्याएं खड़ी की। तथापि उसने शहर पनाह के पुनः निर्माण का कार्य पूरा किया और अपने समय एवं अपनी पीढ़ी में परमेश्वर की सेवा की। हम नहमिया 5:9 में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नाम धराई न करें। आज संसार में मसीह निंदित है। क्या वह कलीसिया के आचरण के कारण निंदित है? विश्वासियों के आचरण के कारण, आपके और मेरे आचरण के कारण? यह एक प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना है। नहमिया ने कहा, तुम्हारे आचरण के कारण हमारे बैरी हमारी नाम धराई करते हैं। क्या ही शर्म की बात है। नहमिया 5:10 में लिखा है, मैं भी और मेरे भाई और मेरे सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। नहमिया ने कहा, मैं तो ऐसी नौकरी पर था जहां मैं पैसा कमा रहा था। यह नहमिया की अग्नि परीक्षा थी। उसने अपने पद को लाभ का कारण नहीं बनाया। आज हमारे समाज में पहुंच वाला मनुष्य रुपए पैसे का भूखा है। अनेक जन पैसे को परमेश्वर से बड़ा समझते हैं। आप 1 पैसे के सिक्के को अपनी आंख के अत्यधिक निकट रखें तो सूरज भी छिप जाएगा। अनेक मनुष्य संसार को ऐसे ही देखते हैं। नहमिया 5:11 में लिखा है, आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न नया दाख मधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो उसका सवा भाग फेर दो। नहमिया ने रईसों से कहा कि उन्होंने जो भी लिया है लौटा दें और ब्याज न लें। तब हम पढ़ते हैं नहमिया 5:12 में, उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। मुझे नहमिया से प्रेम है। वह कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता, अतः याजकों के समक्ष शपथ खाओ। मैंने अपने सेवकाई में जो सबसे बड़ी भूल की वह थी कुछ विश्वासियों पर भरोसा करना। मैं कहना तो नहीं चाहता, परंतु यह मेरा अनुभव है। एक विश्वासी का वचन विश्वास योग्य होना चाहिए। मुझे एक विशिष्ट व्यापारी ने कहा, वह ईमानदार व्यक्ति था, कहा, भाई मैं अब ऐसे स्थान पर आ गया हूँ कि मैं विश्वासियों के साथ व्यापारिक संबंध रखना ही नहीं चाहता। इससे तो अच्छा है कि मैं किसी सांसारिक मनुष्य के साथ व्यापार करूं, क्योंकि मैं उससे सावधान रहता हूं। विश्वासियों को मैं ईमानदार मानकर चलता हूं, परंतु ऐसा होता नहीं है। नहमिया व्यवहारिक था। उसने कहा, ठीक है, तुमने जो कुछ लिया है उसे लौटाने के लिए तैयार हो, परंतु तुम्हें याजकों के समक्ष शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। नहमिया 5:13 में आगे लिखा है, फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। मेरे विचार से नहमिया के समान आज मंच पर से ऐसी कठोर बात कह दी जाए तो कलिसिया आमीन कहेगी? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बुराई करने वाले को बाहर कर देना ही अच्छा है। नहमिया ने ऐसा ही किया। उसने वास्तव में ऐसों को श्राप दिया। कैसा सजीव एवं नाटकीय दृश्य है। नहमिया ने अपने कपड़े की छोर झाड़ी। स्मरण रखें कि वह एक सरकारी नौकर था और वर्दी पहनता था। उसने अपना लंबा बागा झाड़ते हुए कहा, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें इसी प्रकार दूर करेगा और मैं भी तुमसे हाथ धो लूंगा। पौलुस ने गलातिया प्रदेश के विश्वासियों को लिखा 5:12 में, भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। पौलुस व्यवस्था पालकों से इतना अधिक दुखी था कि वह चाहता था कि वे बहिष्कृत कर दिए जाएं, क्योंकि वे गलातिया के विश्वासियों के विश्वास को बहुत अधिक हानि पहुंचा रहे थे। यह कठोर शब्द है। अब नहमिया का व्यक्तिगत जीवन हमारे सामने है। नहमिया की पुस्तक 5:14 में लिखा है, फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थशत्र के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाई अधिपति के हक का भोजन खाते रहे। उसे वेतन लेने का अधिकार था, परंतु वह नहीं लेगा। तब हम देखेंगे नहमिया 5:15 में, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। नहमिया से पूर्व के अधिपति वेतन लेते थे, परंतु नहमिया ने ऐसा नहीं किया। ये पुरुष प्रेम योग्य हैं। जी हाँ, आइए हम पढ़ें नहमिया 15:16। लिखा है, फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। नहमिया ने प्रॉपर्टी का धंधा नहीं किया। उसने पैसा और अन्न देकर किसी की भूमि बंधक नहीं रखी, न ही उसने किसी से रिश्वत ली। नहमिया 5:17 में लिखा है, फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। ध्यान दें, वह 150 अतिथियों का लगातार भोजन कराता था। वह अप्रवासी यहूदियों के भी सेवा सत्कार करता था, क्योंकि उन्होंने अब तक रहने का स्थान नहीं पाया था। उसने यह सब अपने ही खर्चे पर किया। वह अन्य सब अधिपतियों से भिन्न था। नहमिया 5:18 में आगे लिखा है, जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, छह अच्छी अच्छी भेड़े या बकरियां थी और मेरे लिए चिड़िये भी तैयार की जाती थी। दस दस दिन के बाद भांति भांति का प्रमुख दाख मधु भी तैयार किया जाता था, तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। मित्रों यहाँ पर ध्यान दें, उसने अधिपति के भोजन भत्ते की मांग नहीं की, क्योंकि उसके मन में अपने परिश्रमी भाइयों के लिए स्थान था। नहमिया 5:19 में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। वह एक विशिष्ट जन था, वह अपने लोगों की चिंता करता था, परंतु वे उसे शीघ्र ही भूल जाएंगे। संसार के अनेक महापुरुष के साथ ऐसा ही हुआ है, मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत छोटी है। नहमिया ने परमेश्वर से कहा कि वह उसे स्मरण रखे। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। परमेश्वर हमारे पाप स्मरण नहीं करता, परंतु हमारे अच्छे काम कभी नहीं भूलता है, वह उन्हें लिख भी लेता है। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, आज आप अपने जीवन में देखें कि आपने कौन से ऐसे काम किए हैं जिसे आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। क्या आज आप ऐसा कह सकते हैं? क्या आपने ऐसे कुछ ऐसे काम किए हैं? यदि कुछ ऐसे काम नहीं है, तो आइए आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए, कहें, हे प्रभु, मैं भी ऐसे काम करना चाहता हूँ जो आपके लिए स्मरण में रख सके। आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने नहमिया के जीवन से अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से सहायता दे एवं आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।